ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव बरतने के आरोप को खारिज कर दिया है। आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व से विपक्ष लगातार यह धारणा बनाने का प्रयास कर रहा है कि विपक्षी दलों वाले राज्यों को बजट में कुछ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी विशेष राज्य का उल्लेख बजट भाषण में नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन राज्यों को नहीं मिलेगा। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट सरकार को बचाने का प्रयास था। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसका विरोध करेगा। श्री खड़गे ने यह भी कहा कि विकास कैसे होगा जब बजट ही संतुलित नहीं है। बाद में विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट भी किया। उधर लोकसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर आपत्ति दर्ज की और कहा कि सदन को शून्यकाल के दौरान योजनाबद्ध तरीके से बाधित करना सही नहीं है। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों के नेताओं ने सदन की सुचारू कार्यवाही चलाने पर सहमति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान विरोध प्रदर्शन उपयुक्त नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार देश के लोकतंत्र को खतरा और समाज में विभाजन पैदा कर सकने वाली सभी झूठी और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार पर अंकुश लगाने के हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास विभिन्न माध्यमों पर प्रसारित होने वाली फर्जी खबरों से निपटने की वैधानिक और संस्थागत व्यवस्था मौजूद है। श्री वैष्णव ने बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय ने नवंबर 2019 में केंद्र सरकार से संबंधित झूठी खबरों का खंडन करने के लिए तथ्य जांच इकाई का गठन किया था। उन्होंने बताया कि 2021 से 2024 के दौरान भारतीय प्रेस परिषद ने महाराष्ट्र से संबंधित फर्जी खबरों की 5 शिकायतों का निपटारा किया था। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के 17,611 गांवों में लगभग 16,818 गांवों में मोबाइल सेवा प्रदान की जा रही है। श्री सिंधिया ने लोकसभा में आज लिखित उत्तर में कहा कि 16,515 गांवों में 4G मोबाइल सेवा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के वंचित गांवों में मोबाइल नेटवर्क प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश में मोबाइल संपर्क बढ़ाने के लिए अन्य पहल भी की हैं। जम्मू कश्मीर में 2023 के बाद से संगठित पथराव और संगठित हड़ताल की एक भी घटना नहीं देखी गई है और केंद्र शासित प्रदेश में विदेशी पर्यटकों के आगमन 2.5 गुना बढ़ गया है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था परिदृश्य में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने शांति, प्रगति और समृद्धि का युग देखा है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक संस्थान पिछले 4 वर्षों के दौरान बिना किसी हड़ताल या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के बिना कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं। बेहतर कानून और व्यवस्था के कारण जम्मू और कश्मीर में 2023 में 2.11 करोड़ पर्यटक घूमने आए। सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों को निपटाने और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। ये पहल सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के 75वें वर्ष में एक मील का पत्थर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उन नागरिकों से इस पहल से लाभ उठाने की अपील की है जिनके मामले शीर्ष अदालत में लंबित हैं। श्रीलंका में महिला एशिया कप क्रिकेट में बांग्लादेश ने मलेशिया को 192 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मलेशिया ने 6 ओवर में 2 विकेट पर 26 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।